मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 3 मार्च 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आज दिन है शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार को मुझे आप सबको कुछ छोटी सी सूचनाएं देनी होती हैं, और ये सूचनाएं सच पूछिए तो पहले से ही चली आ रही हुई सूचनाओं को मैं दोहराता हूं। और सूचना ये है दोस्तों कि शनिवार और रविवार को छुट्टियां होने की वजह से आपको डेली ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो शनिवार को एज इट इज आपको AFEIS.com पर मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल चीजें भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप अपने शनिवार और रविवार जो छुट्टी के दिन हैं उनका अतिरिक्त इस्तेमाल कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस लिहाज से आपको योजना और कुरुक्षेत्र की 4 आर्टिकल प्रोवाइड किए जाते हैं, 2 योजना से, 2 कुरुक्षेत्र से, यानी कि 2 इंग्लिश के होते हैं और 2 हिंदी के होते हैं। जरूरी नहीं कि हिंदी और इंग्लिश के बिल्कुल ट्रांसलेटेड ही हो या सेम आर्टिकल हो जो हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग भाषाओं में हो, कभी कभी आपने पाया होगा कि वे अलग भी होते हैं। और मित्रों, इन आर्टिकल्स के साथ ही आपको एक वीकली क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाता है जो खासकर सिविल सर्विस के मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है। मैं एक बार आप लोगों से फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब आपको वीकली क्वेश्चन मिलता है तो आप ये न मान करके चलें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपको तुरंत उसका उत्तर लिखना शुरू कर देना है। आप वीकली क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो आप उसे एक टॉपिक के रूप में लीजिए कि आपको जो प्रोवाइड किया गया है वो क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक टॉपिक है, और फिर आप उस टॉपिक की तैयारी कीजिए। या तो आपकी तैयारी होगी तब तो कोई बात नहीं, तैयारी नहीं है तो बाकायदे आप उस टॉपिक की तैयारी कीजिए। टॉपिक की तैयारी करने के बाद फिर क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, और क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले मित्रों, सबसे पहले आप पॉइंट्स निकालें कि आपको इस उत्तर में कौन कौन से बिंदु कवर करने हैं, कौन कौन से विचार लाने हैं, और फिर उन्हें स्ट्रक्चर्ड करें, यानी कि उसका एक रूप बनाएं। लिखने के बाद छोड़ मत दें कि हाँ अब मैंने लिख लिया, मेरा काम खत्म हो गया। लिखने के बाद उसे फिर से पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर से प्रश्न को पढ़ें जो पूछा गया है, और आप अपने मन से सवाल करें, खुद से ये सवाल करें कि जो इसमें प्रश्न पूछा गया है क्या मैंने उसका उत्तर दे दिया है, या मतलब मुझे अपना उत्तर पढ़ करके क्या संतुष्टि मिल रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं परफेक्ट संतुष्टि मिल रही है तब बात खत्म हो गई, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं समथिंग इज मिसिंग, कि कुछ छूट रहा है, कुछ कमी रह गई है, तो फिर उस पर मेहनत करें और फिर उसे लिखें और फिर पढ़ें और फिर देखें कि अब क्या स्थिति है। अगर संतुष्टि का स्तर ठीक ठाक है तो मानकर चलिए कि आपने उत्तर लिख लिया है, और अगर लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ और थॉट्स आने चाहिए और कंटेंट आने चाहिए तो आप देखिए कि वो कहां है, कहां मिलेंगे, कहां से आएंगे, फिर से तैयारी कीजिए। मित्रों, ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, मानकर चलिए कि सिविल सर्विस में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स का मतलब है कि आप मेंस में पहुंच चुके हैं और मेंस में सेलेक्टेड कैंडिडेट पहुंचे हैं, लगभग 12,000 से 15,000 कैंडिडेट पहुंचे हैं, और देखिए कि चुनौती ये है इसमें से हार्डली 2,500 से 3,000 कैंडिडेट ही केवल बचेंगे, और आपको 15,000 सेलेक्टेड, मैं लाखों में से 3,000 की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो सेलेक्टेड है जिनकी एक बार छटनी हो चुकी है, यानी कि इन स्टूडेंट्स का अपना एक स्तर है, उनमें फिर आपको जगह बनानी है, और फिर इंटरव्यू में तो आपको मालूम है कि फिर 2,500-3,000 में से एक स्थान हासिल करना है, तो आपको शुरू से ही जो स्कोर है खासकर मेन एग्जामिनेशन से उसको ध्यान में रखकर चलना होगा, और वो जो आपका अतिरिक्त स्कोर है मुझे नहीं लगता कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के बिना वो आ पाएगा। मुझे मालूम है फ्रेंड्स कि ये काम थोड़ा सा कठिन होता है, उबाऊ होता है, सच में उबाऊ होता है, हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं, दिमाग में तनाव आ जाता है, क्या लिखें क्या नहीं लिखें, इसको छोड़ें, ये इसको लिखना है या नहीं लिखना, ये भी डिसाइड करने में मुश्किल होती है कि इसको लिखना है नहीं लिखना है। लेकिन इस द्वंद से या कह लीजिए इस तकलीफ से तो गुजरना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप एक बड़ी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो देखिए कुछ न कुछ अतिरिक्त तो आपको करना ही होगा फ्रेंड्स। इस यही बात सोचकर मैं आप लोगों को एक टॉपिक प्रोवाइड करता हूं, एक टॉपिक प्रोवाइड करता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हालांकि मैं प्रोवाइड करता हूं एक क्वेश्चन ही, लेकिन मेरे दिमाग में टॉपिक होता है और उस टॉपिक की जो सर्वाधिक संभावनाओं वाला जो प्रश्न बन सकता है उस प्रश्न को मैं उसमें गूंथता हूं, उसमें डालने की कोशिश करता हूं। दोस्तों अपनी ऊब से बचिए और प्लीज मेरी इस सलाह को तो कम से कम आपको मान ही लेनी चाहिए। और आप ये मत सोचिएगा कि जब आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तब आप प्रैक्टिस करेंगे, उसका कारण यह है कि प्रैक्टिस ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस आपके मैकेनिज्म में आ जाना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में रच बस जाना चाहिए और दो चार महीने की प्रैक्टिस से वो नहीं होता है, इसलिए बहुत इसके लिए बहुत लंबे वक्त की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको अभी से शुरू करना चाहिए। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि उत्तर कैसे लिखें, अपने उत्तर को कैसे जांचें, इन बातों को इन सवालों को मैंने अपने किताब में हल करने की कोशिश की है। आपको मालूम होगा मैं मित्रों की मेरी दो किताबें सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में आई हैं, आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग एक, इसमें उत्तर कैसे लिखें दिया हुआ है, और आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग दो, इसमें अपने उत्तर को कैसे जांचें, ये टॉपिक है। अगर आपके पास ये किताब होगी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज बीच बीच में इस आर्टिकल को पढ़ते रहें, मतलब इस चैप्टर को पढ़ते रहें, आर्टिकल नहीं कहना चाहिए, इस चैप्टर को पढ़ते रहें, उससे आपको दिशा मिलेगी, उससे आपको और स्पष्टता आती चली जाएगी। और इस तरह के जो चैप्टर होते हैं ना वो एक बार पढ़कर छोड़ देने के नहीं होते हैं, ये बार बार पढ़ने के होते हैं, क्योंकि आप जैसे कि कमरा होता है ना कि आप जितनी बार झाड़ू लगाएंगे कुछ ना कुछ कचरा निकल ही जाएगा, तो जितनी बार आप इन चीजों को पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपकी अंतर्दृष्टि विकसित होती चली जाएगी। तो दोस्तों आप यह काम जरूर करें। तो अब इस जरूरी सूचना के बाद अब मैं मित्रों आता हूं आज के अपने टॉपिक पर, और आज का मैंने जो टॉपिक चुना है ये इसके चुनने का आधार बड़ा विचित्र है। चुनने का आधार यह है कि आप लोगों ने भी वो फिल्म देखी होगी और मैंने भी देखी जॉली एलएलबी 2। आप कहेंगे जॉली एलएलबी 2 देख करके कैसे टॉपिक चुना जा सकता है, यही सिविल सर्विस की थोड़ी सी दृष्टि होती है कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और चारों तरफ देखना भी है। मित्रों आप लोगों ने भी देखी ही होगी फिल्म, उस फिल्म की मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी उसका एकदम आखिरी का हिस्सा, सिविल सर्विस की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं। आखिरी में आप देखते हैं कि जो जज है वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए कि न्यायालय की क्या हालत है, फाइलें पड़ी हुई हैं, कमरा आने का मन नहीं करता है, कमरे की यह हालत है, लेकिन इसके बावजूद जो जनता है उसका बहुत बड़ा भरोसा न्यायालय पर है और यह भरोसा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब भी आपस में कोई लड़ाई विवाद तकरार लोगों के बीच में होती है तो वो यही चुनौती देते हैं कि आई विल सी यू इन अ कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, तो मतलब इतना बड़ा भरोसा है और यह भरोसा बना रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मित्रों अपने आप में ही एक टॉपिक हो सकता है, सिविल सर्विस का क्वेश्चन हो सकता है या मेंस का मतलब पेपर का क्वेश्चन हो सकता है, और यहां तक कि ऐसे का भी एक विषय हो सकता है कि जनता का भरोसा और न्यायालय, क्या न्यायालय जनता के भरोसे को बनाए रखने में सक्षम रही है, मतलब इस तरह के कुछ भी प्रश्न पूछे जाते हैं जा सकते हैं। और ये जो मैं आपको आज अलग तरीके से जो लेकर चल रहा हूं उस को आप यूं कह लीजिए कि न्यायालय का एक अप्लाइड फॉर्म है, न्यायालय का जो एक व्यावहारिक पक्ष है जिस पर सामान्यतया हम लोगों का ध्यान नहीं जाता उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूं। अदरवाइज तो बहुत सी चीजें हैं मित्रों समस्याओं के बारे में आप जानते ही हैं, जज साहब ने भी जो जॉली एलएलबी 2 में है उन्होंने कुछ समस्याएं बताई हैं कि 3 करोड़ केस पेंडिंग है और कुल हमारे पास 21,000 जज हैं, हालांकि आंकड़े में वो 18,000 आपको 19,000 ये भी पढ़ने को आपको मिलेगा, जबकि हमारा जो विधि आयोग है उसने 3 साल पहले कहा था कि अगर जो हाई कोर्ट में सोचिए कि हाई कोर्ट में जो हमारे केसेस पेंडिंग हैं अगर उनको निपटाना है थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम में तो उसी के लिए 1,000 अतिरिक्त जजों की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ समस्याएं तो उन्होंने वहां बकायदे बता दी। तो इसीलिए दूसरा क्वेश्चन यह भी बनता है कि हमारे न्यायालयों की क्या समस्याएं हैं, यह भी प्रश्न बनता है। तो मित्रों, इन सब को मिला जुला करके मैं कुछ बातें आपसे आज शेयर करना चाह रहा हूं। इसमें कुछ बातें तो आप जानते भी होंगे और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको थोड़ा सा सोचने की तरफ ले जाएंगी। आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग आसपास जो कुछ समय पहले ही जो न्यायालय से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको एक बार याद कर लेते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न देखा होगा कि सिविल सर्विस में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें होता है कि एग्जाम्पल देकर के समझाइए, और वो एग्जाम्पल कौन से होने चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि वो एग्जाम्पल लेटेस्ट हो। यह हम एक बात और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं डाइवर्ट कर रहा हूं, वो ये कि जो न्यायालय का जो टॉपिक है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, अदरवाइज अब नीचे तक भी ले जाते हैं, लेकिन ले जा सकते हैं, लेकिन नीचे कोर्ट में सेशन कोर्ट वगैरह के क्वेश्चंस आते नहीं है। मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप सिविल सर्विस का पेपर उठा करके देखिए, सेकेंड पेपर, जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर, आपको कोई भी वर्ष ऐसा नहीं मिलेगा जिस साल उस पर प्रश्न न पूछा गया। आपको हर साल उस पर प्रश्न मिल जाएंगे। मैं यहां थोड़ा सा प्रश्न भी आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि क्या होता है ना कि जब हम अनसॉल्व्ड पेपर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है, या यूं कह लीजिए कि फैले हुए पानी को किस दिशा में बढ़ना चाहिए वो मर्यादा मिल जाती है, वो तट मिल जाते हैं, वो ढलान मिल जाती है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए ये इतना बड़ा महासागर है, बड़ा तो अपने आप में ही महासागर होता है, कि इसमें अगर आपके पास दिशा नहीं है तो आप तैर कितना भी लीजिए तट पर नहीं पहुंच पाएंगे। लोग कह देते हैं ना कि सामान्य अध्ययन मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, आम तौर पर तार्किक रूप से या कह लीजिए वैधानिक रूप से बिल्कुल पक्का है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि महासागर में कोई रास्ता होता ही नहीं है, कोई दिशाबोध तक नहीं होता है आपको कि आप कर सके, लेकिन फिर भी जहाज तो पहुंचते हैं ना, जहां पहुंचना चाहिए वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उनको रास्ता मालूम है, उनको दिशाबोध कराने वाले यंत्र उनके पास है। बस वही है, सिविल सर्विस में भी फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि वो दिशाबोध कराने वाला यंत्र आपके पास होना चाहिए। और मैं एक तरीके से कह सकते हैं कि अनसॉल्व्ड पेपर को दिशाबोध कराने वाला यंत्र ही मानता हूं। तो दोस्तों, मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों का कुछ वक्त इस तरह के प्रश्न पढ़ने में ले लेता हूं, जो कि आपके पास भी अनसॉल्व्ड पेपर होने के कारण आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बात बनेगी नहीं। मैं यहां उसे यहां गूंथ रहा हूं, अपने उद्बोधन के बीच में ही डाल करके इसे कंप्लीट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रेंड्स, ये मानकर चलिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। मैंने तो यहां तक देखा कि प्री में भी एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, यानी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक यह है। तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना चाहिए कि इस टॉपिक पर बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए, खासकर इसके संवैधानिक प्रावधानों को लेकर के, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस किए गए हैं, राइट। फिर इसके ऊपर क्या दबाव हुआ, इसका क्या थोड़ा सा इतिहास जैसा रहा है वो पढ़ने के बाद, फिर आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो कंटेम्परेरी इश्यूज पर होना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है, वो संविधान से आपसे नहीं पूछेंगे कि हमारे संविधान ने न्यायालय की स्वतंत्रता को किस तरीके से बनाकर रखा है, उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन आपको जानना होगा, क्योंकि यदि आप वो नहीं जानेंगे तो फिर ये जो कंटेम्परेरी इश्यूज जो उठ रहे हैं इनका सलूशन बता ही नहीं सकेंगे, इन पर कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको रियल सिचुएशन मालूम ही नहीं है। यानी कि आपको वो भी जानना है और ये भी जानना है। ये क्यों जानना है ये आपको अनसॉल्व्ड पेपर बताएंगे, कैसे जानना है, कितना जानना है, किस दिशा में जानना है अनसॉल्व्ड पेपर बताएंगे। तो दोस्तों, आइए मैं कुछ प्रश्न आपको पढ़कर सुना रहा हूं। 2016 में जुडिशियल को लेकर, जुडिशरी को लेकर दो प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए दो प्रश्न हैं, उसमें नो डाउट कि जो एक प्रश्न है वो हल करना बड़ा मुश्किल है, अननोन सा केस था, पता नहीं कैसे पूछ लिया गया। लेकिन मैं आपको एक बात यहां और तसल्ली देने के लिए बताऊंगा, और यह तसल्ली कोई झूठी तसल्ली नहीं है, बिल्कुल सही तसल्ली है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में शायद ही कोई लिख कर आ सके। हां, हो सकता है कि किसी ने LLB किया है, LLM किया है, या ऑप्शनल में उसका लॉ है, तो फिर वह उसे कर सकता है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे, मैं व्यावहारिकता की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो होता क्या है कि हम निराश हो जाते हैं, बुरी तरह से हताश हो जाते हैं, और लगता है कि अब तो हम गए। आपको अपनी इस हताशा को रोकना है, इससे अपने आप को बचाना है। और इसी तरह का एक प्रश्न दोस्तों 2016 के मेंस में पूछा गया था, सेकंड पेपर में। आप देखिए कि क्या है, कोहिलो केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था, इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्व का है। इंग्लिश में है, व्हाट वॉज हेल्ड इन द कोहिलो केस इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस amongst the basic feature of the constitution। आप देख रहे हैं, तो ये जो कोहिलो केस है, आपने पढ़ा होगा संविधान भी, संविधान तो खैर ओरिजिनल में तो मिलना ही नहीं, लेकिन संविधान से संबंधित जो किताबें होती हैं राजनीति विज्ञान की, वो सब पढ़े होंगे और देखेंगे कि आप इसमें उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरे गोलकनाथ मामला और दूसरे मामलों के तो उल्लेख मिलते हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट रहे हैं हमारे जुडिशियल के डेवलपमेंट, यहां तक कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी विकास यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण रहा, लेकिन कोहिलो केस कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। अब आप क्या करेंगे, आप वही करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। एक बात मैं आपको यहां और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप देखिए कि कोहिलो केस में क्या अभी निर्धारित किया गया था, ये दे दिया उन्होंने जो भी निर्धारित किया था। एक छोटा सा पार्ट है, अगर हम इसको ये जो प्रश्न है 12.5 नंबर का है, तो हम ये मान करके चले कि ये 5-5.5 नंबर का होगा। जो 7-7.5 नंबर हैं वो इसके सेकेंड पार्ट में हैं, हालांकि इसमें डिविजन्स ऑफ मार्क्स नहीं दिए हैं। क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में प्रमुख महत्व का है, क्या आप कह सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये हमारे संविधान की जो आत्मा है, आप कह लीजिए बुनियादी अभिलक्षणों का मतलब है संविधान की आत्मा के अंतर्गत आते हैं, तो कम से कम इसको तो आप हैंडल कर ही सकते हैं, इसको तो आप लिख ही लेंगे। बस वो दिया हुआ इस संदर्भ में, तो अब आपको संदर्भ तो मालूम है नहीं, ये कोहिलो केस क्या था, ठीक है संदर्भ को छोड़ दीजिए, तो आप ये मान करके 12.5 नंबर में से आपने 5-6 नंबर का उत्तर तो दे ही दिया ना, तो 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे, तो इतना निराश होने की भी बात नहीं है। तो दोस्तों ये पहला प्रश्न था, और इसके माध्यम से मैंने आपसे एक दूसरी बात भी कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मैं माफी चाहूंगा कि मैं जब इस तरह के सवाल उठाता हूं या इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ पेश करता हूं, तो उसी समय जो दिमाग में बातें आती हैं जो मुझे बहुत जरूरी लगती हैं, तो मैं वो चर्चाएं आपसे करने लगता हूं और मेरा थोड़ा सा डाइवर्शन हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो मस्ट है, क्योंकि ऐसी चर्चाएं फिर अलग से नहीं होती हैं। अब आप देखिए कि दूसरा क्या प्रश्न पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अर्ध न्यायिक ब्रैकेट में है न्यायिकवत निकाय से क्या तात्पर्य, ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए, ठोस उदाहरण। छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सरल भी है। इंग्लिश में है, व्हाट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, आप ट्रिब्यूनल्स और ये सब सुनते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, हल्के फुल्के एग्जाम्पल नहीं कि आप कुछ भी दे दी, कुछ भी लिख दिया और बात हो गई, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल जो कि यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट जो जुडिशियल इस तरह की जो बॉडीज हैं उनके बारे में आपको बताना है। मित्रों अब मैं आपको 2015 का एक क्वेश्चन पढ़कर सुना रहा हूं। मुझे मालूम है कि टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस डेली ऑडियो को यहीं तक सीमित रखूंगा, केवल प्रश्नों के प्रश्न क्या पूछे गए हैं उन्हें बताने तक सीमित रखूंगा, और इसके कंटिन्यूएशन में ही जो नेक्स्ट ऑडियो होगा मित्रों, जो 6 तारीख का ऑडियो होगा, जो मंडे का डेली ऑडियो लेक्चर होगा, उसमें मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, लंबा प्रश्न है, अध्यादेशों का आश्रय लेने ने हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है, अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिए कि क्या इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय लेने को और सुगम बना दिया है, क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर दिया जाना चाहिए। इंग्लिश में है, रिस्टोरिंग टू ऑर्डिनेंस हैज ऑलवेज रेज्ड कंसर्न ऑन वायलेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन। व्हाइल नोटिंग द rationals justifying the power of promulgate ordinances, analyze whether the decisions of the Supreme Court on the issue have further facilitated restoring to this power. Should the power to promulgate ordinance be repealed? ये प्रश्न है मित्रों, ये भी 12.5 नंबर का है। ये मेरे पास जो पेपर की फोटो कॉपी है उसके अक्षर बहुत फैले हुए से हैं, तो मित्रों जरा पढ़ने में इस पेपर को थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि आपकी समझ में तो आ ही गया होगा और वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मित्रों आइए हम 2014 का एक प्रश्न देख लेते हैं। 2014 में जो पूछा गया था, ये हमारा आर्थिक अंतिम प्रश्न होगा। आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चत अग्रतक्षी प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में न्यायिक सक्रियतावाद द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, द जुडिशरी हैज प्लेड ए हाईली प्रोएक्टिव रोल इन एंश्योरिंग दैट इंडिया डेवलप्स इंटू ए थ्राइविंग डेमोक्रेसी। In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideas of democracy. ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, और 2013 का जो प्रश्न है उसे मैं चाहूंगा कि आप खुद अपने अनसॉल्व्ड पेपर को उठाकर देख लें, इतना काम तो मुझे आपके लिए भी छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो शेष भाग है इसको आप दो भागों में विभाजित कर लें, पार्ट टू जिसमें मैं अब कुछ जो नए इश्यूज न्यायपालिका को लेकर के आ रहे हैं उनकी चर्चा करूंगा और मैं समझता हूं कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अब आप सबको मैं इन दो दिनों की छुट्टी के लिए शुभकामनाएं देते हुए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।